الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Viewers of Madani Channel, once again, you are welcome in program Forecast. آپ سب کو خوش آمدید. امام سخاوی کی کتاب ہے القول البدیع، درود پاک کے بیان میں. اس میں آپ نے ایک بہت پیاری روایت امام ابن امام، یعنی کہ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں ارشاد فرمایا، حیثما کنتم فصلوا علیہ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي، کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. He wants us to remember him everywhere. تو پھر کیوں نہ ہم انہیں یاد کریں، اور یاد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا. آئیے درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، یو آر واچنگ فور کاسٹ. وٹ از فور کاسٹ؟ کیا ہے یہ فور کاسٹ؟ ایکچولی دس از این الرٹ ٹو پریونٹ اس فرام سم پاسبل ڈینجر. کوئی خطرہ ہے، کچھ انہونی ہونے والی ہے، اس سے بچانے کے لیے فور کاسٹ دی جاتی ہے. عام طور پہ ویدر فور کاسٹ بتایا جاتا ہے، موسم کا حال آپ سنتے ہیں کہ موسم اس ریجن کے اندر ایسا ہوگا، بارش ہوگی، گرمی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، کوئی طوفان ہو اس کے بارے میں فور کاسٹ دی جاتی ہے. بٹ وٹ سو ایور اٹ از، جو کوئی بھی فور کاسٹ ہو، دیٹ از ناٹ کنفرمڈ، دیٹ از اسمپشن بیسڈ. ایک کیلکولیشن ہوتی ہے، حالات دیکھے جاتے ہیں، اس کی بنا پر پریڈکشنز کی جاتی ہیں. سم ٹائمز اٹ ہیپن اکارڈنگلی اینڈ سم ٹائمز اٹ ڈز ناٹ. ایسا ہی ہے نا؟ لیکن میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں قیامت قائم ہونے سے پہلے اس امت کے بارے میں حالات بتائے کہ دس ول ہیپن، دیٹ ول ہیپن، یہ برائی ہوگی، یہ حالات ہوں گے، وہ ازمشن بیسڈ نہیں ہے، وہ اندازہ نہیں ہے، رادر دیٹ از کنفرمڈ، 100% کنفرمڈ. بہت سی باتیں ان میں سے ہو چکی جو تاریخ میں موجود ہیں، بہت سی ہو رہی ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور بہت سی ہوں گی کہ دنیاوی معاملات میں جو ہمیں فور کاسٹ ملتی ہے، ہمیں کوئی خطرہ بتایا جاتا ہے تو ہم الرٹ ہو جاتے ہیں، ہم پریکاشنز لیتے ہیں، ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو یقینی خبریں دے چکے، یہ ہوگا، ایسے حالات ہوں گے، ان کے بارے میں گویا کہ ہمارا انداز ایسا ہے کہ وی ڈونٹ مائنڈ، معاذ اللہ. جبکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور نے جو فرما دیا، دیٹ از سرٹنلی ٹو ہیپن. آج آپ کے سامنے جو روایت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے حالات کو بیان فرمایا ہے، اس کا تعلق ڈائریکٹلی میری آپ کی زندگی سے متعلق ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، والذی نفسی بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, लयतियन अलन नासी ज़मानुन, अ टाइम विल कम ऑन पीपल, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा, ला यदरिल क़ातिलु फी अय्य शैइन क़तला, कि कातिल को मालूम नहीं होगा कि उसने किस बिना पर कत्ल किया है, वला यदरिल मक्तूलु अला अय्य शैइन क़तला, और ना ही मक्तूल को मालूम होगा कि उसे किस वजह से कत्ल किया गया है। 1400 साल पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं, और आज के हालात देखिए कि दुनिया में जहां कत्लो गारत गरी है, इंसान इंसान के खून का प्यासा है, सैकड़ों लोग रोज मारे जा रहे हैं, हम देखते हैं कि ना मारने वाले को मालूम कि वो क्यों मार रहा है, और ना मरने वाले को मालूम कि वो क्यों मर रहा है। ये अलमिया है हमारा नाजरीन, इंसान की जान बहुत कीमती है, और इंसान की जान लेना, कत्ल करना, ये बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु कुरान पाक के अंदर कत्ल करने से मुताल्लिक कुछ यूं इरशाद फरमाता है, फरमाया वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन, और जो कोई मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे, डेलिबरेटली इंटेंशनली, फरमाया फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, तो उसका बदला जहन्नम है कि मुद्दतों उसमें रहे। मुद्दतों कितना लंबा अरसा अल्लाह ही जाने। वग़ादिबल्लाहु अलैहि, फरमाया और अल्लाह ने उस पर गज़ब किया, किस पर, कि जिसने किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल किया। वलअनहू, और उस पर अल्लाह ने लानत की। वअअद्दा लहू अज़ाबन अज़ीमा, और उसके लिए तैयार रखा बड़ा अज़ाब, जिस अज़ाब को अल्लाह बड़ा कहे वो किस कदर बड़ा अज़ाब होगा। अलियाज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाह ताला मुझे आपको अपनी नाराज़गी, अपने गज़ब और अपने अज़ाब से महफूज रखे। तो नाज़रीन, इंसान की जान लेना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, लेकिन माज़ अल्लाह आज के दौर में इंसान चंद पैसों की खातिर, छोटे छोटे मफादात की खातिर, अपनी सो कॉल्ड ईगो की खातिर दूसरे इंसान की जान ले लेता है। आए दिन आप सुनते हैं, दोस्त ने गुस्से में आकर दोस्त की जान ले ली, चंद पैसों के झगड़े की वजह से एक शख्स ने दूसरे को कत्ल कर लिया, जमीन के झगड़े की वजह से फलां जगह पर इतने कत्ल हो गए, हत्ता के माज़ अल्लाह ये खबरें आती हैं कि बेटे ने बाप को कत्ल कर दिया, माँ को कत्ल कर दिया, बाप ने औलाद को कत्ल कर दिया। ये क्या है? ये नफ्से अम्मारा और शैतान का इंसान को वरगलाना है कि वो इंसान को इस हद तक वरगला देते हैं, उसके इमोशंस को इतना ट्रिगर कर दिया जाता है कि वो खुद पर कंट्रोल खो बैठता है। आप अगर कभी किसी जेल में जाएं और जो कातिल हैं उनका इंटरव्यू करें, उनसे मालूमात करें कि व्हाई डिड यू किल अ पर्सन, क्यों तुमने कत्ल कर दिया, तो मोस्ट ऑफ देम वुड रिप्लाई यू, वुड टेल यू, जो आपको आंसर देंगे वो ये होगा कि वी कुड नॉट कंट्रोल आवर इमोशंस, वी कुड नॉट कंट्रोल आवर एंगर, हम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके थे। जी हाँ, गुस्सा ये वो चीज है जो इंसान को खुद को भुला देता है, और वो इस बात तक को भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है, उसके सामने कौन है, और जो वो स्टेप लेने जा रहा है उसका रिजल्ट क्या आएगा। और जब आप खुद पर कंट्रोल नहीं रखते तो जहां फिर आप अपना नुकसान करते हैं वहीं आप दूसरे की भी दुनिया उजाड़ देते हैं, दूसरे का भी नुकसान करते हैं। ताकतवर वो नहीं जो पहलवान हो दूसरे को पिछाड़ दे। जबकि हुजूर क्या पैमाना बता रहे हैं, आप फरमाते हैं बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने आप को काबू में रखे। जी हाँ, यहीं से असल ब्रेवरी पता चलती है, हाउ मच ब्रेव यू आर। आप ब्रेव हैं या नहीं इसको अगर टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर जब गुस्सा आए उस वक्त अपनी हालत देख लीजिए, अपने इमोशंस देख लीजिए कि कहीं उस वक्त आप अपने इमोशंस की वजह से, अपने गुस्से की वजह से अपनी जबान पर, अपने हाथ पर कंट्रोल रखते हैं या खो बैठते हैं। अगर आपको खुद पर कंट्रोल है, आपको अल्लाह का खौफ है और आप खामोश रहते हैं, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर आप मुबारक बात के मुस्तहिक हैं कि हदीस की रोशनी में आप पहलवान हैं। यस यू आर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने कुछ यूं बयान किया कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, जो अपने गुस्से में मुझे याद रखेगा मैं उसे अपने जलाल के वक्त याद रखूंगा। अल्लाहु अकबर। सामने वाले को सुना सकता है, उसकी पकड़ कर सकता है, उसको डांट सकता है, लेकिन खुद पर कंट्रोल रखे हुए। फरमाया और हलाक यानी के अजाब होने वालों के साथ उसे हलाक ना करूंगा, उसे अजाब ना दूंगा। कत्ल, किसी की जान लेना, आप जानते हैं यही वो जुर्म है जो इस ज़मीन पर सबसे पहले किया गया था। जी हाँ, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल किया था और आइंदा क़यामत तक अब जितने भी कत्ल होंगे उन सब का गुनाह, जहाँ हर कातिल को अपने कत्ल का गुनाह मिलेगा वहीं उनके कत्लों और उनके इस गुनाह का गुनाह काबील को भी मिलेगा क्योंकि उसने इस गुनाह का आगाज़ किया था। काबील ने हसद की वजह से, अपने भाई से हसद करते हुए उनकी जान ले ली, उनको कत्ल कर लिया। और हसद ये ऐसा गुनाह है जो इंसान को बहुत सारे दूसरे गुनाहों में मुब्तला कर देता है। बेसिकली अगर हसद को आप समझना चाहते हैं तो हसद क्या है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में कुछ यूं भी इरशाद फरमाया, अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फदलिह, या वो लोगों से हसद करते हैं उस पर जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया। जो हसद करने वाला शख्स होता है, जो जालिस शख्स होता है, गोया के वो अल्लाह पर एतराज कर रहा होता है कि अल्लाह ने उसको क्यों दिया, उसको क्यों नवाजा, मुझे क्यों महरूम रखा। और इस जलन में वो इतना बढ़ जाता है कि वो किसी की जान लेने पर राजी हो जाता है और जान तक ले लेता है। ये हसद ही है जिसके बारे में मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुछ यूं इरशाद फरमाया था कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को। हमें इस बीमारी को समझना चाहिए और अपना जायज़ा लेना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर ये बड़ा गुनाह हसद तो नहीं, कहीं हम अपने किसी भाई बहन को मिलने वाले किसी फजल, किसी नेमत, किसी बाउंटी की वजह से उससे हसद तो नहीं कर रहे। हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि या बारी ताला, जो नेमत तूने अपने इस बंदे को अता फरमाई है इसमें इसके लिए बरकत अता फरमा और मुझे भी अता फरमा, अब ये हसद नहीं रहेगा। नाजरीन, जहां मेरी आपकी एक इंसान की जान कीमती है, वहीं जान के साथ साथ इस्लाम हमें यह सिखाता है कि उसकी इज्जत भी कीमती है। जी हाँ, जैसे आपकी जान की वैल्यू है, वैसे ही आपकी इज्जत की भी वैल्यू है। इट इज ऑल्सो वेरी प्रीशियस, इट इज ऑल्सो अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह। बल्कि यहां तक फरमाया गया कि मुसलमान की हुर्मत, मुसलमान की इज्जत काबे की हुर्मत से बढ़कर है। इससे अंदाजा लगाइए कि इस्लाम ने आपकी इज्जत को, आपकी हुर्मत को कितनी इंपॉर्टेंस दी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस्लाम तो मेरी आपकी इज्जत की हिफाजत कर रहा है, उसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, क्या मैं और आप भी खुद अपनी इज्जत को वैल्यू देते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं? जहां मुझे अपनी और दूसरे की जान की हिफाजत करनी है, वहीं मुझे अपनी और दूसरे मुसलमान भाई की इज्जत की भी हिफाजत करनी है। हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी गैदरिंग्स, फ्रेंड सर्कल ऐसा है जहां इज्जत को कोई अहमियत नहीं दी जाती। वहां दोस्ती यारी में, फ्रैंकनेस के अंदर, बेतकल्लुफी के अंदर एक दूसरे की इज्जत उछाली जाती है, एक दूसरे की इज्जत पामाल की जाती है, एक दूसरे पर हूटिंग की जाती है, गालम गलोच की जाती है और उसको नॉर्मल लिया जाता है, बल्कि दोस्ती का तकाजा समझा जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां इंसान की जान अल्लाह की दी हुई नेमत है, अमानत है, वहीं इंसान की इज्जत भी अल्लाह की दी हुई नेमत है और अमानत है, हमें उसकी हिफाजत करनी है। ऐसा फ्रेंड सर्कल, ऐसी गैदरिंग जहां आपकी इज्जत की हिफाजत नहीं है, वहां हमें नहीं बैठना चाहिए। हमें ऐसों के साथ बैठना चाहिए जो अपनी इज्जत की भी ख्याल रखते हैं और दूसरों की इज्जत की भी फिक्र करते हैं, कदर करते हैं। और ये कहां मुयस्सर होता है? जहां खौफे खुदा वाले लोग होते हैं, जिनके दिलों में तकवा होता है, जो कोई बात कहने से पहले सोचते हैं कि मेरी इस बात कहने में सामने वाले को कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो उसके इमोशंस, उसकी फीलिंग्स हर्ट तो नहीं होंगी। हमारी गैदरिंग भी ऐसे ही लोगों के साथ होनी चाहिए कि जो अल्लाह का खौफ रखते हों। अब आप सोचिए कि बुजुर्गाने दीन सेल्फ कंट्रोल पर क्यों इतना जोर देते हैं, क्यों इतना फोकस करते हैं कि वी आर सपोज टू हैव सेल्फ कंट्रोल। हमें अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, अपने इमोशंस पर, अपने आमाल पर। इस वजह से कि जब बंदा खुद पर कंट्रोल खो बैठता है, तो फिर वो अपना भी नुकसान करता है, दूसरे का भी नुकसान करता है। सेल्फ कंट्रोल इज मस्ट, इट इज नेसेसरी। आपने सुना होगा कि कहा जाता है, इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर सेल्फ, यू कैन नॉट कंट्रोल अदर्स। इफ यू कैन नॉट विन योर सेल्फ, यू कैन नॉट विन द वर्ल्ड। जी हां, अगर आप खुद को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप दूसरे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सबसे पहले खुद को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना ये जरूरी है। और ये कब आएगा? ये जब आएगा जब हमें ऐसे माहिर बुजुर्गाने दीन की सोहबत मुयस्सर होगी कि जिन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल सीख रखा है, जिनको खुद पर कंट्रोल करना आता है। जब हम उनकी तरबियत में, उनकी सोहबत में रहेंगे, तो अल्लाह के फजल से प्रैक्टिस के साथ मुझे और आपको भी खुद पर कंट्रोल आ जाएगा। बिहम्दिल्लाह ताला, दावत इस्लामी का प्यारा माहौल आपको ऐसे मिलेगा कि जहां इज्जतों की हिफाजत भी की जाती है, ایک دوسرے کو عزت دی بھی جاتی ہے، بلکہ بہت سارے آپ کو اس پیارے ماحول میں ایسے لوگ ملیں گے کہ کل تک جن کی عزت نہیں تھی، کل تک جو دوسروں کی عزتیں اچھالتے تھے، آج وہ اللہ کے فضل سے خود بھی باعزت ہیں اور دوسروں کی عزت کرنے والے بھی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اس پیارے ماحول سے وابستہ رکھیں، تاکہ ہماری عزت، ہماری جان اور سامنے والے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت اور جان کی ویلیو، قدر معلوم ہو اور ہم ایک دوسرے کا تحفظ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یوں ہی رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سن کر، اس میں غور و فکر کر کے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی حدیث کے ساتھ، ایک نئے میسج کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔